शारदा जी हैरानी से आस्तिक को देखने लगी। मतलब उन्हें यकीन नहीं था कि आस्तिक उन्हें ये कह भी सकता है। शारदा जी ने हैरानी से आस्तिक से कहा, राजा साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी सास हूँ और मैं आपके ऑफिस में सफाई का काम करूँगी। आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई और वो बोला, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और डोंट वरी, मैं आपको ये काम फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसकी बाकायदा कीमत दूंगा, और वो भी इतनी अच्छी कीमत दूंगा कि आपको दूसरी नौकरी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वरना मेरी पहुंच तो इतनी है कि मैं चाहूं तो आप चाहकर भी कहीं नौकरी नहीं कर सकती हैं। वैसे भी इस काम में क्या बुराई है, आप मेहनत से काम करके पैसे कमाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है मेरे पास, आप चाहें तो कहीं पर बार गर्ल का काम कर सकती हैं, नाच कर लोगों का मनोरंजन कर सकती हैं। शारदा जी बिल्कुल ब्लैंक हो गई थीं। वो शून्य भाव से सिर्फ आस्तिक को देखे जा रही थीं। उनके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहे थे, बार गर्ल। शारदा जी हैरानी से आस्तिक को देखती हैं और घबराए हुए आवाज में कहती हैं, क्या कहा तुमने, बार गर्ल? आस्तिक खुद हैरान नजरों से शारदा जी को देखता है और कहता है, क्या कहा मैंने, बार गर्ल कहा मैंने? सॉरी, शायद गलती से कह दिया होगा, इस उम्र में आपके नाचने के पैसे कौन ही देगा। एक बात कहूँ, आपको देखकर लगता है कि अपनी जवानी में आप काफ़ी मज़ेदार रही होंगी। शारदा जी हैरान नज़रों से आस्तिक को देख रही थीं और उसके कहे हुए शब्दों को समझ रही थीं, या यूं कहें कि उसके तानों को महसूस कर रही थीं। आस्तिक ने बेफिक्री के साथ कहा, खैर छोड़िए ये सब बातें, अब बताइए क्या आप मेरे यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं? शारदा जी रॉयल ऑफिस से बाहर आईं और वो टैक्सी स्टैंड पर जाकर पीछे पलटकर रॉयल ऑफिस को देखा। शारदा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने एक हाथ से अपने आंसुओं को पोंछा और गुस्से में उस कंपनी को देखकर कहा, आस्तिक रायचंद, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हारे यहाँ पर नौकरी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती। मुझे पता है कि तुम कौन हो और मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो, पर देखना मैं कैसे तुम्हारे इरादों को बर्बाद करती हूँ, और साथ में मैं तुम्हें भी बर्बाद करती हूँ। दूसरी तरफ आस्तिक अपने ऑफिस में बैठा पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कि उसने कोई कोहिनूर हासिल कर लिया था। वो हंसता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठता है और कहता है, शारदा मेहरा, तुम नहीं जानती हो तुमने मेरे यहाँ पर नौकरी करने का फैसला करके मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। यहाँ से शुरू होता है मेरा प्लान बी। अब से तुम हर रोज वो बेइज्जती महसूस करोगी जो तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि असल में बेइज्जती होती क्या है। अगर मैंने तुम्हें नर्क न दिखा दिया ना, तो मेरा नाम भी आस्तिक रायचंद नहीं। तभी टेबल पर पड़ा आस्तिक का फ़ोन बजा। आस्तिक ने अपना फ़ोन उठाया और देखा तो उसके खास आदमी का फ़ोन था। आस्तिक ने फ़ोन उठाकर कहा, कुछ पता चला? सामने से कोई कुछ बोला और आस्तिक का पूरा चेहरा गुस्से में चमक उठा। वो गुस्से में अपनी चेयर से उठा और अपना कोट लेते हुए बोला, उसे अड्डे पर पहुंचाओ, मैं वहीं आता हूँ। दूसरी तरफ रॉयल गेस्ट हाउस, जानवी अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक फ़ोन था। सुबह जब उसने पृथ्वी से कहा कि उसे एक कॉल करनी है, तो पृथ्वी ने उसे एक फ़ोन ला कर दिया था। जानवी ने फ़ोन में नंबर डायल किया और अपने कान से लगाया। दो रिंग के बाद ही कोई फ़ोन उठाता है और सामने से आवाज़ आती है, कौन बोल रहा है? जानवी कहती है, मैडम मैं जानवी बोल रही हूँ। सामने से कोई महिला थी जो गुस्से में जानवी से कहती है, जानवी तुम अब फ़ोन कर रही हो, तुमसे कहा था ना मैंने कि जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करो। देखो, अगर तुमने जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो हमें तुम्हारी माँ को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तभी जानवी कहती है, नहीं मैडम, आप मेरी माँ को अस्पताल से बाहर मत निकालिएगा, मैं जल्दी पैसे लेकर आपके पास आ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। दरअसल मैं जहाँ पर काम के सिलसिले में आई थी वहाँ मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं वापस नहीं आ पाई, पर प्लीज़ मेरी माँ का इलाज जारी रखिए, मैं जल्द से जल्द वहाँ आती हूँ और आपके सारे पैसे चुका दूंगी। सामने से वो औरत गुस्से में कहती है, ये क्या खैराती अस्पताल है जहाँ पर तुम्हारी माँ का मुफ्त में इलाज होगा? यहाँ पर हर चीज़ की कीमत होती है, तुमने तो अभी तक पिछला पैसा ही नहीं दिया है। देखो, चुपचाप से सारे पैसे दे दो, वरना अपनी माँ को यहाँ से उठाकर किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दो। जानवी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से फ़ोन किसी ने छीन लिया। जानवी हैरानी से सामने देखती है तो सामने पृथ्वी था। पृथ्वी फ़ोन अपने कान पर लगाते हुए कहता है, कौन सा हॉस्पिटल है ये? जानवी हैरानी से पृथ्वी को देखती हैं और कहती हैं, ये क्या कर रहे हो, मेरा फ़ोन वापस करो, मुझे बात करनी है। लेकिन पृथ्वी जानवी का हाथ पकड़ लेता है और सख्ती से कहता है, मैंने पूछा कौन सा हॉस्पिटल है ये? सामने से वो औरत कहती है, आप कौन बोल रहे हैं? पृथ्वी सख्ती से कहता है, डॉक्टर पृथ्वी रायचंद, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, अब तुम बताओ तुम्हारे हॉस्पिटल का नाम क्या है? सामने से पृथ्वी की डिग्रियों का नाम सुनकर उस औरत की हालत खराब हो गई। वो जल्दी से कहती है, डॉक्टर साहब ये सविताबाई हॉस्पिटल है रोहतक में। पृथ्वी कहता है, ठीक है, अगले आधे घंटे में तुम्हारे पास इस अस्पताल के डीन की कॉल आएगी। पृथ्वी ये बोलकर फ़ोन काट देता है और फ़ोन में कुछ टेक्स्ट मैसेज ऑन करके जानवी के सामने करता है और कहता है, तुम्हारी माँ कौन से वार्ड में है और उनका किस चीज़ का इलाज चल रहा है, ये सारी डिटेल्स मुझे इसमें लिख कर दे दो। जानवी एक नज़र पृथ्वी को देखती है और फिर धीरे से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। पृथ्वी हैरानी से जानवी को देखकर कहता है, क्या हुआ, जानवी धीरे से अपना चेहरा उठाकर पृथ्वी को देखती है तो पृथ्वी हैरान रह जाता है। जानवी की आंखों में आंसू थे। जानवी ने पृथ्वी से कहा, मैं आपसे कोई एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। अगर आपको सच में मेरे लिए कुछ करना है तो मेरे दिल्ली जाने का इंतजाम कर दीजिए। वहां मेरी माँ को मेरी जरूरत है।